हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री एक चक्रधाम की श्री नित्यानंद प्रभु की श्री हड़ाई पंडित महाशय की श्री पद्मावती देवी की हरे कृष्णा मेबी ये फैन यू कैन क्लोज ऑफ हरे कृष्णा तो सब लोग स्वस्थ हैं ना जी। कुछ माता जी का बीमार है माफी चाहता हूँ हरे श्री हरे कृष्णा तो आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई है क्योंकि आप लोग श्री नित्यानंद प्रभु के जन्म स्थान पर पहुंच गए हो। मुझे लगता है कि जन्म जन्मांतर के भक्ति और पुण्य और भक्तों की सेवा करने के बाद ही यहाँ पर पहुंच सकते हैं और अगर हमने नहीं भी किया ऐसे तो और एक रास्ता है पहुंचने का, वो है नित्यानंद प्रभु की असीम कृपा होगी तो भी आ सकते हैं यहाँ पर। तो आप दोनों में से एक हो, या तो आप नित्यानंद प्रभु की असीम कृपा प्राप्त करके यहाँ पर आए हो या आपने बहुत ज़्यादा भगवान का सेवा किया है। दोनों तरफ से आपको बधाई, क्योंकि ये गुप्त वृंदावन है। नित्यानंद प्रभु जो है उनका तत्व समझना बहुत ज़रूरी है। श्री नित्यानंद प्रभु बलराम जी के अवतार हैं और बलराम जी आदि गुरु हैं। बलस्थान है, बलस्थान यानी कि जो भी भगवान का बल है उसका स्रोत नित्यानंद प्रभु है। आध्यात्मिक बल, शरीर का बल, मन का बल, बुद्धि का बल, जो भी बल आपको पता है वो सब बल का उगम बलराम जी के यहाँ से होता है। और बलराम जी श्री कृष्ण के पहले अवतार हैं, लीला अवतार हैं, इसलिए बलराम जी को आदि गुरु भी कहा गया है। यानी कि जो कृपा है कृष्ण की वो दो व्यक्ति में विभाजित है, एक राधा रानी और एक बलराम जी, और कोई तीसरा व्यक्ति नहीं। इसलिए जो हमारे श्री गुरुदेव हैं, हमारे गुरुदेव के गुरुदेव प्रभुपाद जी हैं और सारी गुरु परंपरा है, ये सभी लोग बलराम जी के प्रतिनिधि हैं। और इसलिए कि नित्यानंद प्रभु बलराम जी के अवतार हैं इसलिए वो नित्यानंद प्रभु के भी प्रतिनिधि हैं। सो ऑल बोनाफाइड गुरुज आर दी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ श्री नित्यानंद और बलराम जी। इसलिए नित्यानंद प्रभु के कृपा के बिना हम गौरांग महाप्रभु की कृपा नहीं प्राप्त कर सकते। गौरांग महाप्रभु की कृपा के बिना हम राधा कृष्ण का प्रेम भक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। और नित्यानंद प्रभु ने स्वयं बताया कि जो 6 गोस्वामी हैं उनकी कृपा के बिना भी राधा कृष्ण के भक्ति का रहस्य कोई समझ नहीं सकता है। तो किसी भी दृष्टि से आप विचार कीजिए, यू कैन थिंक फ्रॉम एनी डायरेक्शन, नित्यानंद प्रभु की कृपा जो है वो बहुत आवश्यक है। श्री गौरांग महाप्रभु का लीला जो है उसमें भी नित्यानंद प्रभु ने कई गौरांग महाप्रभु ने कई बार ये प्रकट किया है अनेक लीलाओं के माध्यम से कि नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किए बिना गौरांग महाप्रभु आपका प्रणाम स्वीकार नहीं करते। मुरारी गुप्ता ने एक बार श्रीवास आंगन में चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किया और उसके बाद में नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया। तो उस रात को मुरारी गुप्ता के स्वप्न में श्री कृष्ण भगवान आए और बलराम जी भी आए और श्री कृष्ण भगवान ने बलराम जी को प्रणाम किया। फिर वो दोनों गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु में चेंज हो गए और फिर गौरांग महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया। और दूसरे दिन जब सुबह ही मुरारी गुप्ता श्रीवास ठाकुर के घर पे आए उन्होंने सबसे पहले नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किया तो गौरांग महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो गए उनसे, उनको बहुत सुंदर मैसेज दिया उन्होंने। और भी कई लीलाएँ हैं गौर लीला में जिसमें नित्यानंद प्रभु का स्थान कितना महत्वपूर्ण है ये स्वयं गौरांग महाप्रभु ने बताया है भक्तों। इसलिए नित्यानंद प्रभु ये जो है वो परम करुणामयी है, अति अति करुणामयी है। दोनों दो गौर निताई तो करुणामय है ही, परम करुणा पाहुन दुई जना निताई गौर चंद्र सब अवतार सर शिरोमणि केवल आनंद कंडा। तो वैसे पूरे जगत में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे निर्माण में, भगवान के पूरे सृजन में इन दोनों के ज़्यादा अधिक कोई दयालु नहीं है, लेकिन इन दोनों के अंदर भी अगर कोई देखना है ज़्यादा दयालु कौन है तो नित्यानंद प्रभु इतने दयालु हैं कि जरा सी भी आपके अंदर भक्ति हो भगवान के लिए, थोड़ी सी भी लेकिन सिंसियर प्रामाणिक भक्ति, और उस प्रामाणिक भक्ति से अगर कोई भगवान का नाम लेता हो और वो प्रामाणिकता से भगवान का नाम लेते समय किसी के आंख में कभी 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 क्या कहते हैं उसको, मतलब मराठी में सुकून, मुझे अभी गलती से कभी एक अश्रु दिखला तो नित्यानंद प्रभु आपको अपना बना लेते हैं। इतने ये नित्यानंद प्रभु जिसको अपना बना लेते हैं उसको पूरी भक्ति का रहस्य मालूम हो जाता है और प्रेम और भक्ति भर भर के प्राप्त हो जाती है। गौरांग महाप्रभु की भक्ति भी और कृपा भी प्राप्त हो जाती है। इन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी पर कृपा किया और उसके बाद में गौरांग महाप्रभु का कृपा प्राप्त हुआ। जय गौर निताई की। हमारे इस्कॉन संप्रदाय में एक माताजी थी जिनका नाम था लादिनी माताजी, कितना लोग जानते हैं उनको। लादिनी माताजी बहुत, प्रभुपाद जी भी बताते थे और बाकी लोग बताते, बहुत भगवान की शुद्ध भक्ति थी। शी वॉज अ प्योर डिवोटी। भगवान की दया से हमने भी उनका दर्शन किया है। वो पुनः यात्रा में आते थे और ऐसा क्या कहें उनको, थकान नाम का कोई चीज़ ही नहीं था उनके अंदर। घंटों 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 नाचते थे, जैसा एल्डरली माता जी, बट सो मच एनर्जी शेयर। और नित्यानंद के ऊपर उनकी विशेष भक्ति थी, विशेष अति विशेष। और उन्होंने अपने संभाषण में जो भी किया भक्तों के साथ में, उन्होंने बताया है कि अगर आपको जीवन में सही में अगर वास्तव में आपको भगवान की भक्ति चाहिए तो बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा के नहीं हो सकता। नित्यानंद प्रभु के चरणों को पकड़ के रखो, ऐसा उन्होंने बताया था। नितय पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला से जाने भक्ति रस सारा। जो नित्यानंद प्रभु के दो कदमों को अपने आप को शरण कर लेता है वही भक्ति का सार समझ सकता है, ऐसे हमारे आचार्यों ने कहा है। सभी आचार्य जो है नित्याई नित्यानंद महाजन का गुणगान करते हैं। ये नित्यानंद प्रभु महाप्रभु जी के आदेश के अनुसार गोद्रूम में सुरभि कुंज में नाम का हाट लगाते हैं, सबको नाम देते हैं। इतने बड़े बलशाली है ये, मैंने आपको बताया हल्के नोक पर पूरा हस्तिनापुर को पृथ्वी से उगाड़ दिया। लेकिन वही नित्यानंद प्रभु कलयुग में अति 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 करुणा में बन कर आते हैं। हम जैसे पतित गृहस्थों के घर पे दंडवत करते हैं, आके मना करने पर भी दोबारा प्रणाम करते हैं, बोले 50 बार दरवाजा बंद करो, हम 50 बार आपको प्रणाम करेंगे, अगर हम एक बार भगवान का नाम लो। जिन्होंने एक एक बात पर पिछले अवतार में दंड दिया है लोगों को, वध कर दिया उनका, वो इस अवतार में इतने सहनशील है, इतना अपराध लोगों का सहन करते हैं। थोड़ी सी भी किसी के मन में अगर भगवान के प्रति भक्ति हो ना, थोड़ी सी भी, तो सारे उसके अपराध माफ कर लेते, सारे उसके जो गलतियां हैं वो सहन कर लेते हैं और उसको भगवान की भक्ति देते हैं। ऐसे नित्यानंद प्रभु, तो वो नित्यानंद प्रभु के हम जन्मस्थान में आए हैं, जो साधारण चीज़ नहीं है। जैसे वृंदावन धाम में हम लोग जाते हैं तो बरसाना राधा रानी का जन्मस्थान जो है बहुत ही उत्कट, वेरी इंटेंस, पावरफुल, स्पिरिचुअली पावरफुल प्लेस, सब लोग जाते हैं। और उसके भी अंदर बहुत सारी लीलाएँ, लीलाओं की स्थलियाँ हैं जहाँ पर राधा रानी अपनी अंदर की लीलाएँ प्रकट करती है। जैसे मान मंदिर है, उसी तरह से कुछ यहाँ पर माहौल है। नित्यानंद प्रभु का जन्म स्थान जो है पूरे गौरांग मंडल में अति उत्कट स्थान है। इसका गौरव कितना किया जाए उतना कम है। यहाँ पर आने का भाग्य प्राप्त होना ये हमारे जीवन का परम 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 भाग्य है। इसलिए अभी जितना भी घंटा, क्योंकि बहुत दूर जगह है, कई घंटे लगते हैं पहुँचने में, तो जितना भी घंटा आपको यहाँ प्राप्त है, नींद आती होगी तो खड़े हो जाओ और नित्यानंद प्रभु की कृपा की याचना करो। जितने क्षण आप यहाँ पर हो, हर क्षण नित्यानंद प्रभु की कृपा की हृदय के अंदर से कोने से प्रार्थना करो, प्लीज बी मर्सीफुल ओ नित्यानंद, ओ करुणामयी नित्यानंद, दया करो, कृपा करो। और ये उनका जन्म स्थान है, लेकिन उनके जन्म के पहले जैसे ये क्या कहते हैं उसको, अबेंडेंट लैंड था, कोई यहाँ पर अवतार नहीं हुआ है, कोई किस संत नहीं आया है, कुछ भी नहीं है, गंगा जमुना कोई बहती नहीं है, नथिंग हैपेंस हियर। इनफैक्ट ये गौड़ देश जो है ना, ये भी ऐसा ही अबेंडेंट देश था। वो गौड़ देश जब महाप्रभु आए तब गौड़ देश बना और इसका महिमा भगवान ने बढ़ाया। तो इससे गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने क्या बताया कि जो सबसे पतित है, जगह है या व्यक्ति है या कोई काम है, वहाँ पर हम आएंगे और उस पतित से पतित जगह को, पतित से पतित व्यक्तियों को, लोगों को परम भेंट प्रदान करेंगे, परम प्राप्ति कराएंगे जीवन की। ऐसा है वो नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं, गौरांगा तुम्ही मोरे दया ना छाड़ियो, और क्या बोलते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारी, पतित पावन हेतु तव अवतार, मोसमा पतित न पाई बेयार। सबसे पतित जो है इनके ऊपर इनकी आंख रहती है, द मोस्ट मर्सीफुल ग्लांस इज ऑन दैट पर्सन। इसलिए हमको सबसे अधिक पतित बनने की जरूरत नहीं है। सबसे अधिक पतित का मतलब क्या होता है, जो अपने आप को समझता है कि मैं पतित हूँ। पतित तो बहुत लोग हैं लेकिन सब लोग समझते नहीं कि पतित हूँ, मतलब मैं कहाँ पतित हूँ, मतलब बहुत अच्छा हूँ, बहुत अच्छे काम करता हूँ। जो हृदय से दीन है, भगवान का एक नाम दीनानाथ है, लेकिन कौन दीन है, जो हृदय से अपने आप को दीन समझते हैं, पतित समझते हैं, अयोग्य समझते हैं। थैंक यू वेरी मच, अभी इसको रख दीजिए बीच में, आपको डिस्टर्ब हो जाएगा कथा, बाद में लेगी, सब लोग दूर से लेना है इसे। प्रभु जी ऐसा खड़ा करो बीच में, ऐसा रखो बीच में, सब लोग ले लेंगे, धन्यवाद, थैंक यू। तो ये जब भावना हमारे मन में आती है ना कि मैं सबसे पतित हूँ, मैं बिल्कुल योग्य नहीं हूँ, तो वो व्यक्ति के ऊपर नित्यानंद प्रभु की और गौरांग महाप्रभु की कृपा होती है। और वो बार बार मुंह से बोलने से हम लोग पतित नहीं होते, हृदय से भावना होनी चाहिए कि आई एम रियली अनडिजर्विंग। तो ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो द्वापर युग में इस गांव में पांडव लोग रहने को आए थे। अभी प्रसाद के बाद में हम जाएंगे वहां पर, उनका घर है, उनका पांडव तला सरोवर भी है वहां का। तो ये वनवास तभी का है जब भी उनको वनवास नहीं हुआ था, लेकिन जब वारणावत में उनको जलाने का प्लान किया ना, तभी शादी नहीं होती उनकी। कुंती देवी और पांच भाई वो लाक्षागृह में गए थे वारणावत में, और उनको जलाने का प्रयास किया, लेकिन फिर विदुर के आइडिया से वो जमीन पे खोद काम किया गया, उसको क्या बनाया, बोगदा बनाया, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, नहीं इंग्लिश में तो नहीं बोलते हैं, हिंदी में नहीं बोलते, सुरंग सुराख बनाया, सुराख जमीन के अंदर रास्ता बनाया और उनको बचा लिया। तो तभी वो कुछ समय के लिए अज्ञातवास में थे, किसी को पता नहीं था, सबको लग रहा था कि जल गए, उन्होंने उनका बहुत दुख भी किया, भीष्मदेव रोए बहुत सब, लेकिन तभी वो अज्ञातवास में यहाँ पर उस समय कुछ समय के लिए आए थे यहाँ पर। वो अपने आप को कुछ समय के लिए विदुर ने कहा था कि छुपाए रखो, तो यहाँ पर इस गांव में आए थे। तो यहाँ पर गांव में क्या था, एक बहुत अद्भुत घटना होती थी, एक बहुत भयंकर राक्षस था, उसका नाम था बकासुर। दो प्रकार के बकासुर हुए हैं, एक बकासुर एक्चुअली बगुला पक्षी, जिसकी कथा मैंने आपको कल बताई, आप लोग नहीं थे शायद, चंपाहाटी में खदीर वन प्रकट है, तो खदीर वन में बकासुर का वध हुआ था, तो मैंने आपको कल बताया था। तो एक था पक्षी राक्षस और एक था एक्चुअली मनुष्य के आकार का भयंकर राक्षस। वो इस गांव के पहाड़ में रहता था और वो रोज आके जो चाहे लोगों को उठा के खाता था, जानवर ये गाय बैल सबको खाता था। तो गांव के लोग बहुत परेशान हो गए, उन्होंने मीटिंग किया और उन्होंने बकासुर के सामने प्रस्ताव रखा कि आप अंधाधुंधी में रोज आके किसी को मत खाओ, हम आपको 15 दिन में एक बार एक जवान लड़का और एक बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी भर के खाना खिलाएंगे, पूरा हजारों किलो में अंदर खाना खिलाएंगे आपको, और आप जो जवान लड़का है उसको भी खाना, जो घोड़े बैल जो भी है उसको भी खाना, और जो खाना भर के भेजा है उसको भी खाना। तो एग्री हो गया, कोई बात नहीं, दिस इज ऑल्सो फाइन। तो रोज 15 दिन के बाद में एक घर का टर्न आता था, उनको पूरा बैलगाड़ी भर के भोजन बनाना है, या तो घोड़ा गाड़ी में घोड़ा भी देना है, बैल भी देना है, जो भी कुछ, और जवान लड़का भी देना है। तो इस तरह से बहुत लोग बच गए, एक एक आदमी का देहांत हो गया, लेकिन कम से कम जो अंधाधुंधे में बहुत लोग मरते थे वो कम से कम बच गए। तो पांडव लोग एक घर में रहने को आए थे ब्राह्मण के रूप में, और एक दिन जब वो वहां पर निवास कर रहे थे तो सब लोग दुखी थे। तो कुंती ने पूछा कि क्या बात है, बोला कुछ नहीं कुछ नहीं, बहुत सारा भोजन बन रहा है घर में फिर भी बता नहीं रहे क्या बात है। बाद में उन्होंने बताया कि आज हमारा टर्न है और हमारे पास एक ही बेटा है, और वो बेटे को आज हम भेज रहे हैं तो हम पूरे अनाथ हो जाएंगे, मतलब हम बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, हमारा सहारा ही नहीं बचेगा। तो कुंती ने कहा कि मेरे पास 5 बच्चे हैं, आपको देखिए मेरे पास 5 हैं, एक जाएगा तो 4 बचेंगे, और मेरी देखभाल के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। वो कहते नहीं नहीं आप हमारे अतिथि हो, आप भगवान की तरह हो, थोड़ी आपके पुत्र को हम भेजेंगे, ये हमारा कर्तव्य हम भेजेंगे। लेकिन बहुत बहस हुई, कुंती ने कहा डोंट वरी, मैं मेरे पुत्र को भेजती हूँ भीमसेन को। भीमसेन बहुत खुश हो गया, आप लोग बैठो ना बैठो, आप लोग आगे आ जाओ थोड़ा सा कम है, उनको बैठने को जगह दो, आ जाओ। तो भीमसेन ज़्यादा करके खुश इसलिए हुआ कि उसको भोजन मिलने वाला था। महाभारत में ऐसा लिखा गया है कि वनवास में या जब भी अज्ञातवास में जब भी वो दुप्त रूप में रहना पड़ता था भिक्षा मांग के, तो ये जो भिक्षा करते थे ना, तो जो भी जितना भी भिक्षा लेके आते थे कुंती माता 2 हिस्सा कर देती, एक हिस्सा भीमसेन को और दूसरा हिस्सा कुंती देवी और 4 भाइयों को। और वो खाकर भी भीमसेन ये वनवास के अंदर, और जब 12 साल का वनवास 13 साल का हुआ उसमें भी वो हमेशा भूखे ही रहे, हमेशा कॉन्स्टेंटली, खाली लास्ट ईयर में थोड़ा सा पेट उनका भरा लास्ट ईयर में, पता है कभी विराट के राज्य में वो वल्लभाचार्य बन के वहाँ पर किचन में थे, तो सोर्स के पास गए, वो सोर्स नॉट एनीवेयर एल्स, इन द नॉट इन पेरिफेरी, इन द सोर्स इटसेल्फ। तो भीमसेन पूरा बैलगाड़ी भर के खाना, इतना पकवान था उसके अंदर, हर प्रकार के व्यंजन थे, जूस थे, दूध, लस्सी, मक्खन, मिठाई, हाँ पकौड़ा, ऐसे हर प्रकार का व्यंजन था उसके अंदर, हर प्रकार की रोटियाँ, प्रकार प्रकार की पंच पकवान थे उसके अंदर, वो भी गाढ़ा भर के। तो भीमसेन ने तो वहीं शुरू कर दिया दरवाजे से ही, बहुत दूर जाना है, पर्वत बहुत दूर है, वहीं से चालू कर दिया। और एक हाथ से गाय वो बैल चला रहे हैं, एक हाथ से पूरा खा रहे हैं, एक एक करके बड़े बड़े मटके के अंदर इतना सब सामान था, वो धीरे धीरे खाया तो बहुत प्रेम से मग्न होकर खा रहे थे, एकदम दिल से आनंद लेकर, हाँ रोमांच भी आ रहे थे आनंद से। जब पहाड़ के नीचे पहुंचे तो पहाड़ से राक्षस देख रहा है कि कोई आदमी बैठा हुआ है, उसकी इतनी हिम्मत है कि वो सब खा रहा है मेरा खाना पूरा। तो राक्षस को बहुत गुस्सा आया, इतनी हिम्मत कि मेरा भोजन खाए। तो राक्षस भाग के आया पहाड़ से कूद के, सीधा उसने भीम पर हमला किया। भीम ने क्या किया, लेफ्ट हैंड से उसको पकड़ के दबा के रखा और राइट हैंड से आखिरी जूस पिया, डोंट डिस्टर्ब टिल आई फिनिश माई मील्स, पूरा खाली किया, फिर उसका साथ युद्ध किया। और उसके साथ में युद्ध करने के बाद में बहुत घनघोर युद्ध हुआ, बहुत घनघोर युद्ध हुआ, और भीमसेन ने बड़ी आसानी से उस घनघोर युद्ध में बकासुर का वध कर दिया, गांव को मुक्त कर दिया। जिन्होंने गांव में आश्रय दिया, गुप्त रूप में आश्रय दिया, उनका गुप्त रूप संभाल के रखा, भोजन खिलाया इतने दिन पांचों भाइयों को, उनका ऋण चुका दिया उन्होंने। तो उस समय जब भीमसेन के द्वारा राक्षस का वध हुआ तो गांव के सारे ज्योतिषी जो है ना बड़े खुश हो गए, वो साथ में आए और पूरा ज्योतिष का कैलकुलेशन करने लगे। तो अचानक उनको एक ध्यान में आया, अरे ये गांव तो बहुत भाग्यशाली है, भगवान बलराम के अवतार यहाँ पर होने वाले हैं, कब ये पता नहीं चल रहा है, वो गणित नहीं कर पा रहे थे वो, लेकिन इसी गांव में बलराम जी का अवतार होने वाला है। तो उनका तो परंपरा था ना, वो सबसे सीनियर मोस्ट ज्योतिषी, फिर यंग ज्योतिषी, फिर थोड़े से उन्होंने संभाल कर रखा है नॉलेज, और सबको बताया कि आपको अगली पीढ़ी को बताना है, ज्योतिष शास्त्र सीखेंगे तो ये भी बताना है कि इसी गांव में आने वाले हैं। द्वापर युग बीत गया, 500 साल भी बीत गए, और फिर गौरांग महाप्रभु के जन्म के बहुत पहले की बात है, इस गांव में भोज नाम के एक बहुत सुंदर भक्त थे, ब्राह्मण, इसको जन्म ऊपर रखना चाहिए, इसको उठा के ऊपर जमीन पर जाने। तो भोज नाम के ब्राह्मण को बहुत पुत्र हुए, सब मर गए किसी कारण, एक पुत्र हुआ वो बचा, उसका नाम था हरो ओजस, बहुत ही विद्वान, बहुत ही उदार हृदय, बहुत शुद्ध हृदय था वो, और उसको फिर लोग प्रेम से हड़ाई पंडित नाम से पुकारने लगे। हरो नाम था उसका, हरो, लेकिन यहाँ कैसे होता है, नित्यानंद को निताई, गौरांगो को निमाई, हाँ नीम के नीचे जन्म हुआ, तो यहाँ पर ऐसे बोलने की प्रचलित कथा है, प्रथा है। तो उनका नाम हो गया हड़ाई पंडित, उनका विवाह पद्मावती से हुआ, पद्मावती बहुत सुंदर कन्या थी, सद्गुणी, सद्गुण संपन्न इसी गांव की, तो उनका विवाह हुआ। एक क्यों आ रहे हैं महेश, एक आ रहे हैं, तो उनको माघ महीने की त्रयोदशी में पुत्र का जन्म हुआ, और ऐसा कहा गया है कि वो जो शिवजी थे ना, शिवजी, उनका नाम मोरेश्वर महादेव है, अब मुझे याद आया, वो जी उसको जरा हिला दो, ऐसा ट्रांसफर करो, ऐसे इस करो, हरे कृष्णा, और थोड़ा कम करो वॉल्यूम, हरे कृष्णा, ठीक है, थोड़ा वहाँ खड़े रहो और एडजस्ट करो उसको। तो वो मोरेश्वर महादेव जहाँ पर हमने दर्शन किया ना, जहाँ दर्शन ठीक से नहीं हो पाया, पानी के अंदर शिवलिंग था, वो हड़ाई पंडित और पद्मावती के बहुत ही आराध्य शिव भगवान है, इस धाम के भी रक्षक, उनकी उन्होंने पूजा की, और उसके बाद में उसके परिणाम स्वरूप नित्यानंद का जन्म हुआ। जो आपने गर्भवास देखा ना, गर्भवास सफ़ेद रंग का मंदिर, वही सूचे का ग्रह है, मैटर्निटी होम, जहाँ पर पद्मावती जी को पुत्र प्राप्ति हुई। मुझे अभी भी आवाज़ आ रही है, तो कम करो ना। और एक और जगह है जो मुझे ठीक से पता नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक जगह है जहाँ पर उनका जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ना, नाल कहते हैं उसको, उसको भी दफनाया गया है, वो लास्ट टाइम हमने दर्शन किया था मुझे याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन उसी के पास में कहीं वो जगह है, वो हम अभी जाएंगे शायद प्रसाद के बाद जाएंगे। उसका नाम है नाड़ो, क्या बता, नाड़ी पोता, नाड़ी पोता, वहाँ पर उनका अम्बिलिकल कॉर्ड को दफनाया गया है। जब नामकरण हुआ तो उनका दो चार नाम रखे गए, क्योंकि तो उनका नाम जैसे जन्म हुआ सभी को बहुत आनंद हुआ, तो एक नाम रखा गया नाम राम, दूसरा नाम रखा गया नित्यानंद, तो कुछ लोग उनको नित्यानंद राम करके पुकारने लगे। और जब उनका क्या कहते हैं उसको, वो टर्न हो गया ना, टर्न क्रॉलिंग चालू हुआ, हाँ पलट गए ना, तभी उनको सब लोग निताई निताई पुकारने लगे। ऐसा कहते हैं कि उनका शरीर जो था वो एकदम मक्खन की तरह मुलायम था, तो लोग उनको प्रेम से क्या बोलते थे कि ये मक्खन की कठपुतली है, पपेट ऑफ मक्खन, लाइक ए स्मॉल डॉल मेड ऑफ मक्खन, इतने वो नरम नरम शरीर था उनका। पद्मावती उनके शरीर में बहुत सुंदर सुंदर तेल लगाती थी चमकाने के लिए, लेकिन ऐसे कहते हैं कि उनका शरीर इतना तेजमय था कि तेल लगाने के बाद थोड़ा वो तेज कम होता था। इट वॉज पुट इन द थिंकिंग ऑफ द इट विल बिकम मोर शाइनिंग, बट तेल की वजह से उनका शरीर थोड़ा डल लगता था एक्चुअली, क्योंकि उनके शरीर से बहुत सुगंध निकलती थी, तो वो सुगंधित तेल जब लगाते थे तो उनका सुगंध थोड़ा कम होता था और बाकी का सुगंध वो डैम्पन करता था। कहने का तात्पर्य क्या है कि दुनिया की कोई भी वस्तु उनके सौंदर्य को बढ़ाने में सक्षम नहीं थी, हिज ओरिजिनल ब्यूटी एंड फ्रेग्रेंस वॉज सो पावरफुल, नथिंग कैन मेक हिम मोर ब्यूटीफुल और मोर फ्रेग्रेंट। इसके बाद में हजारों लोग उनको जस्ट दर्शन करने आते थे। पद्मावती उनको बहुत ठंडे ठंडे प्रकार के तेल लगाया करती थी, लेकिन नित्यानंद प्रभु का जो शीश था, मैंने बताया ना कि हजारों चंद्रों की तरह ठंडा था, नित्यानंद जी का स्पर्श करते ही बहुत लोग अपनी चिंताओं को और कष्टों को मुक्ति पाते थे। दे वुड गेट रिलीव्ड ऑफ एंग्जाइटी एंड ऑल काइंड्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन जस्ट बाय टचिंग नित्यानंद। तो नित्यानंद प्रभु जब बड़े हो गए थोड़े से तो कहने लगे मुझे मित्रों के साथ में खेलना है। तो सबसे फेवरेट क्या खेल था उनका, किसी को मालूम है? सबसे फेवरेट खेल उसका वो है ड्रामा खेल, ड्रामा करना। और इतने से थे वो, पाठशाला भी में नहीं गए थे, लेकिन उनको सारी राम लीला कृष्ण लीला सब लीला नरसिंह लीला सब उनको एकदम परफेक्टली याद थी। प्रभु जी कोशिश करना है आपको, ट्राई योर बेस्ट, क्योंकि नित्यानंद प्रभु का लीला जो है बहुत मधुर लीला है, बहुत ही मधुर लीला है। सब लोग ध्यान से सुनिए, किसी को कोई कष्ट होता हो नींद होती हो तो खड़े हो जाना, लेकिन ये लीलाओं को मिस नहीं करना। तो हड़ाई पंडित जो है वो कभी भी पद्मावती और हड़ाई पंडित दोनों जो है दे वर ऑलवेज कम्पीट विद ईच अदर, मैं लोगों के आप लो, मैं लोगों की आप लो। तो जब उन्होंने कहा कि हमको खेलना है तो किस दोनों व्यक्ति को छोड़ने को तैयार नहीं थे, बिकॉज दे वॉन्टेड टू कीप हिम इन हिज इन देयर लैप ओनली। वो बार बार कहते हमको खेलना है, अभी बड़े हो गए हमको खेलना है, तो छोड़ते नहीं थे। तो जहाँ जहाँ भी खेलना है वहाँ पर हड़ाई पंडित पद्मावती उनके पीछे पीछे जाते थे, फिर वो थोड़े नाराज होते थे, फिर उन्होंने कहा कि अभी हमको अपने आप खेलने दो, अभी हम आप बीच में बताओ। फिर बड़ी मुश्किल से वो आना बंद किया और तब नित्यानंद प्रभु ने ड्रामा करना शुरू किया। और कहते थे वो इतने कुशल थे ड्रामा के डायलॉग लिखने में, गाइड करने में, डायरेक्शन देने में, किरदार चुनने में, कौन बनेगा कौन क्या क्या बनेगा, बहुत ही कुशल थे वो। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात थी कि उनको इतनी गहराई में सभी शास्त्र का और स्टोरियों का ज्ञान था कि कहाँ कहाँ रामलीला में और कृष्ण लीला में क्या क्या हुआ सब उनको पता था। उनके वो जो माइन्यूट नॉलेज था वो देखकर सब लोग हैरान होते थे कि हाउ ही नोज, फ्रॉम वेयर ही नोज, हु हैज टॉट हिम, इस प्रकार का आश्चर्य लोगों को होता था। तो बचपन में क्या क्या किया उन्होंने, जब लीला करते थे ड्रामा करते थे उसमें पूरी तरह से मग्न हो जाते थे। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो किरदार में वो भाग लेते थे वो किरदार मय हो जाते थे। जैसे राम उसमें लक्ष्मण का रोल किया, हाँ मैं बताता हूँ लीला कैसी है। तो पूरा रामायण का ड्रामा चालू किया उन्होंने, तो सब लोगों को पूरा सेटिंग करके रखा था कि ऐसा हुआ तो वैसे करना, वैसे हुआ तो वैसे करना, फिर ये हुआ तो वो करना, फिर मैं ऐसे हो जाऊंगा, फिर आपको ये करना है। तो आप जानते हैं ना रामायण की लीला में वो उन्होंने लक्ष्मण का रोल किया, किसी को कृष्ण बना दिया, किसी को इंद्रजीत बना दिया जो उनका युद्ध करने वाला है, कोई रावण बन गया, कोई राम बन गया, सब ऐसे बना दिया। तो इंद्रजीत का और लक्ष्मण का जब युद्ध हुआ नाटक में, तो इंद्रजीत ने कुछ एक ऐसा कुछ लिया, एक फूल लिया कमल का, और वो निताई को ऐसे फेंक के मारा शक्ति के रूप में, और निताई बेहोश हो गई। जब बेहोश हो गए तो सब लोग दुखी हो गए, अरे और निताई इज अनकॉन्शियस। बहुत देर बेहोश रहे, सब लोग हवा दे रहे, ड्रामा बंद हो गया। अभी क्या करने का, अभी क्या करने का, अभी क्या करना है। तो इतने दुखी हो गए कि आगे ड्रामा में क्या होने वाला सब लोग भूल गए। एक्चुअली उन्होंने बताया था कि जब मैं वो फूल को मारने के बाद बेहोश हो जाऊंगा ना, तो एक व्यक्ति को हनुमान जिसको बनाया है उसको जाना है और पर्वत लेके आना है। वो लोग इतने दुखी हो गए उसको बेहोश देख के, भूल ही गया वो एक्टिंग करने वाला आदमी हनुमान जिसको बनना था, वो हनुमान भी उधर आके बैठ कर रोने लगा। तो हड़ाई पंडित आ गए, पद्मावती आ गई, अरे क्या हुआ क्या हुआ, वो बता रहे ऐसा ऐसा हुआ ड्रामा में, युद्ध हुआ, फिर वो हनुमान कहने इंद्रजीत ने फूल फेंका और ये बेहोश हो गया, तब से बेहोश है। अरे फिर वो आपने पर्वत नहीं लेके आया क्या, अरे हाँ मेरा तो काम था, वो भाग गया, भाग के आया पर्वत लेके आया, और उन्होंने वो सुदेशना जो वैद्य है उसको भी लेके आया, उसने वो ड्रामा किया और उसको वो कुछ जड़ी बूटी सुंगाया, तुरंत नितानंद पूछे गए, हरि ओ नितानंद प्रभु की जय हो। तो ऐसे वो मग्न होकर लीला करते थे, गौचारण लीला, कृष्ण की जन्म लीला, भगवान की जन्म की बाल लीला, राक्षसों को मारने की लीला, ऐसा बहुत सुंदर सुंदर काम करते। वहां पर देखो पद्मावती कुंड आपको दर्शन कराए ना, उसको पद्मावती कुंड भी कहते हैं, लेकिन मेनली वो नित्यानंद कुंड है। क्या उसका मतलब है कि वहां पर छोटे से निताई को माताजी स्नान कराती थी, उनका प्राइवेट कुंड था। वो कहते हैं कि वो कुंड जो है वो इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि इसके जल के स्पर्श से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और कृष्ण प्रेम और भक्ति प्राप्त हो जाती है। सब मोस्ट पावरफुल, स्पिरिचुअली मोस्ट पावरफुल कुंड, क्योंकि नित्यानंद प्रभु का वो चरणामृत है, वो रोज वहां पर स्नान कराते हैं। वहां पर ऐसा भाव है, मैंने आपको मैसेज भेजा था ना, कीप साइलेंट ओवर देयर, क्योंकि वहां पर गर्भवास है, यानी कि बेबी इज देयर, बेबी इज ऑलवेज स्लीपिंग, ये भाव से वहां पर सेवा है। इसलिए वहां पर कीर्तन करना, प्रवचन करना, नॉइज करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। आपने देखा कितनी शांति थी, और चूंकि आपने शांति रखी आपको भी कुछ दिव्यता का अनुभव हो गया रहेगा उधर। हाँ, इट्स वेरी वेरी पावरफुल प्लेस। वहीं पर जो पेड़ है ना, वो पेड़ जो है वहाँ पर जब विश्वरूप घर छोड़ के चले गए थे तो वहाँ पर कुछ समय के लिए आए थे और विश्राम किया था, क्योंकि विश्वरूप भी नित्यानंद जी के अवतार हैं, बलराम जी के अंश अवतार हैं वो। फिर वहाँ पर आपने कुछ भग्न अवशेष देखा ना, वो उनके घर के अवशेष हैं, और उसी की स्मृति में फिर वो बड़ा घर बनाया है। बाजू में एक पेड़ है, वो उसका नाम है षष्ठी तला, वहाँ पर नित्यानंद प्रभु का षष्ठी पूजन हुआ था, भगवान कृष्ण का भी षष्ठी पूजन हुआ था, उसका नाम है छठी करा, और वो छठी करा जो है जो ब्रज में है वो यहाँ पर प्रकट है, उसका नाम षट्टी करा बोलते हैं यहाँ पर, षट्टी करा। तो वो छठी करा धाम यहाँ पर प्रकट है, छठी करा धाम में कृष्ण भगवान का षष्ठी पूजन हुआ था और यहाँ पर नित्यानंद प्रभु का षष्ठी पूजन हुआ था। कृष्ण भगवान के षष्ठी पूजन का एक रहस्य बताना आपको मैं सब बताऊंगा, क्योंकि वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ तो 6 दिन के बाद में क्या हुआ, 6 दिन में पुतना आई और पुतना का उदिन वध हो गया। तो ये सब गड़बड़ में यशोदा माई षष्ठी पूजन करना भूल गई, और फिर एक के बाद गड़बड़ होती रही, त्रिणावर्त आया, शक्टासुर आया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो भगवान कृष्ण का षष्ठी पूजन रह ही गया। फिर भगवान का फर्स्ट बर्थडे जब आया तो यशोदा माई को याद आया, अरे फर्स्ट बर्थडे आ गया, अभी षष्ठी पूजन नहीं हुआ। तो कहते हैं कि झट से अष्टमी के पहले जो षष्ठी में आई उसमें यशोदा मैया ने षष्ठी पूजन कर दिया, क्योंकि नियम ऐसा है कि 1 साल पहले के होने के पहले षष्ठी पूजन होना ही चाहिए। तो आज भी ब्रज में जन्माष्टमी के 2 दिन पहले षष्ठी पूजन होता है, वास्तव में कब होना चाहिए, जन्म के बाद होना चाहिए, लेकिन नंदगांव में आज भी षष्ठी पूजन जो है वो गोकुलाष्टमी के 2 दिन पहले होता है। ये सब प्रेम की बातें हैं। हाँ, प्रेम के कारण, भगवान के विषय में चिंता के कारण भक्त लोग कभी कभी भूल के दिव्य जिला करते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक बकुल का पेड़ है, उसके नीचे भगवान ने नित्यानंद रूप ने कालिया लीला किया था। और ये जमुना जी का जो पात्र है, यहाँ पर उन्होंने सेतु बंध का लीला किया था। सब रामायण में जो होता है, यहाँ पर उन्होंने वृंदावन प्रकट किया है। तो वृंदावन का प्रतीक यहाँ पर सब गुप्त वृंदावन कहते हैं। तो जमुना जी प्रकट किए, छोटे से पात्र है लेकिन बहुत सुंदर तरीके से प्रकट किया। यहाँ पर एक एक पेड़ को उन्होंने बंसीवट बनाया और वहां पर रासलीला रचाया, रासलीला प्रकट किया। यहाँ पर नित्यानंद प्रभु ने दशावतार लीला किया, सभी अलग अलग भगवान के अवतारों का लीला किया। तो इस तरह से 12 साल की उम्र तक उन्होंने यहाँ के लोगों को बहुत आनंद दिया, अति आनंद के सागर में डुबो दिया। ऐसे कहते हैं कि गांव का हर एक व्यक्ति जो है, श्री श्री गौरांग महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की, एक चक्र धाम की जय। एक विशेषता है जो आज भी बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है, सुखदेव महाराज भी बता रहे थे परीक्षित महाराज को उसके बारे में, कि गोकुल में भी सभी लोग और नंदगांव में भी सभी लोग अपने पुत्र से अधिक प्रेम कृष्ण और बलराम से करते थे। तो परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं, कैसे हो सकता है, हाउ इट इज पॉसिबल, अपने बच्चे को सैक्रिफाइस करके वो कृष्ण बलराम को अपना बनाना चाहते थे, इतना प्रेम था उनका। वही भाव था एक चक्र धाम में, बहुत पुत्र थे लोगों को यहां पर, लेकिन नित्यानंद प्रभु पर सब लोग अति प्रेम करते थे। और अब ये जो लीला है, समाप्त करके हम प्रसाद लेने जाएंगे, तो 12 साल सभी एक चक्रवासियों को उन्होंने बहुत आनंद दिया। वो जो लीला करते थे रामा, तो सब लोग बैठ के देखते थे, इनका महानता दिव्यता आश्चर्य भी करते थे, लेकिन बहुत सब लोगों को उन्होंने आनंद दिया। उनको लोग खिलाते थे अपने घर में, उनसे दुलारते थे, अपने गोद में बिठाते थे, उनको अपने हाथ से माखन दिलाते थे, और एक ग्वाल बाल के रूप में वो गाय और बछड़े भी चराते थे। यहाँ पर बहुत सुंदर लीला किया। तो 12 साल तक एक चक्रवासियों को उन्होंने आनंद के सागर में डुबो दिया। 12वें साल में ऐसी एक अद्भुत घटना हुई कि एक सन्यासी इस गांव में आया। सन्यासी आया गांव में तो हड़ाई पंडित के घर में उसने आश्रय लिया। उसके घर में ही उनकी सन्यासी की सेवा होने लगी। और जब सन्यासी जाने लगा, दिन रात वो सन्यासी बैठकर कृष्ण कथाओं का वर्णन करते थे हरे पंडित के घर में। उन्होंने बहुत ज्यादा आनंद दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब जाने का समय आया तो उसने कहा कि मुझे दीर्घ तीर्थ यात्रा में जाना है और मुझे एक सहायक की जरूरत है, आई वॉन्ट वन असिस्टेंट। और आपका जो पुत्र है वो मेरे विचार से बहुत परफेक्ट असिस्टेंट है, वो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपने पुत्र को दे दो। जब ये बात सुनी तो हड़ाई पंडित पद्मावती दोनों बेहोश हो गए। उनको ये कल्पना भी सहन नहीं हुई कि जिसको हम एक मिनट के लिए अपनी नज़र से भी ओझल नहीं कर सकते, जिसको देखे बिना हम भोजन नहीं कर सकते, जिसको देखे बिना रात नहीं होती है, कैसे हम ये विचार भी कर सकते कि हम निताई प्रभु को, निताई को दे देंगे इनको। तो बार बार बेहोश हो गए, बार बार होश में आ गए। लेकिन हड़ाई पंडित और पद्मावती दोनों बहुत वैष्णव थे, श्रेष्ठ वैष्णव। वो जानते थे कि सन्यासी साधु की इच्छाओं को भी त्याग नहीं करना चाहिए, खास करके जब वो अतिथि बनकर घर पे आए तो कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए उनकी इच्छाओं को। तो होश में आ गए, दोनों ने अंदर जाकर डिस्कस किया। उन्होंने कहा जो भी है, हमारे घर में आए हुए अतिथि हमारे भगवान की तरह है, उनकी इच्छा पूर्ण करना आवश्यक है। तो उन्होंने हाँ कर दिया। नित्यानंद प्रभु अभी तक इतने लग रहे थे घर परिवार में, माता पिता से इतने आसक्त लगते थे, इस समय ऐसे विरक्त हो गए जैसे कोई किसी का है ही नहीं। यहाँ पर जाके खड़े हो गए सन्यासी के पीछे, रेडी पैक्ड अप, रेडी टू गो। और कुछ ही क्षण में सन्यासी उनको लेकर एक चक्र से निकल गया, एक चक्र से निकल गया। उसके बाद में वो सन्यासी ने भी उस पेड़ के नीचे आराम किया है, विश्राम तलाक। जहाँ पर आपने देखा। तो सन्यासी ने जाने के पहले एक मुरलीधर कृष्ण का मूर्ति माता को दे दिया, और ऐसे कहते हैं मुरलीधर कृष्ण सन्यासी ने कहा कि जब भी तुम मुरलीधर कृष्ण को देखोगे तुम्हें नित्यानंद प्रभु नजर आएंगे, उस तरह से तुम्हारा नित्यानंद प्रभु का जो भाव है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, आपको विरह का अनुभव इतना होगा फिर भी मुरलीधर कृष्ण को आप सेवा करोगे, उनका दर्शन करोगे तो उसी में आपको नित्यानंदिताय का दर्शन होगा। आज भी अभी हमको बताना भूल गया, बंकिम राय के मंदिर के अंदर वो मुरलीधर की मूर्ति है, वो मैं आपको वहाँ पर दिखाना भूल गया। और मुरलीधर की मूर्ति को पद्मावती ने और हराय पंडित ने बहुत हृदय से भजन किया है उसका। जैसे ही पता चला कि नेताई चले गए, सब गांव वहाँ भाग भाग के आ गए, सबने कहा कि अरे अगर बालक ही चाहिए था तो मेरा पुत्र ले लेते। सब लोग आ गए, बोले मेरा पुत्र जो है वो भोजन बनाने को आता है, उसको कपड़ा धोने को आता है, उसको बर्तन मांजने को आता है, उसको झाड़ू लगाने आता है, उसको सब कुछ बनाने को आता है, वो बहुत ट्रेंड है, नेताई तो बहुत छोटा है, अभी तो उसने कुछ ट्रेनिंग में लिया नहीं है, तो क्यों नहीं मेरे बच्चे को, आप सब लोग अपने बच्चे को लेके आए कि मेरे बच्चे को लो, मेरे बच्चे को लो। और वो बच्चा भी तैयार था जो खेलने वाले थे सब लोग निताई के साथ में, लेकिन फिर भी गांव के वैष्णवों के प्रति उनका इतना भाव था कि गांव के कल्याण के लिए गांव में नित्यानंद प्रभु होने चाहिए, इस भाव से बच्चे भी तैयार थे कि मैं जाऊँगा, मुझे खाना बनाने को आता है, मुझे वस्त्र धोने को आता है, मुझे सब सेवा करने को आते हैं, मैं बचपन से ट्रेनिंग ले चुका हूँ। और सब लोग ने फिर तय किया, क्योंकि वो तो दोनों बेहोश अवस्था में थे, थोड़े होश में थे कभी, थोड़े बेहोश में थे, ज़्यादातर बेहोश में ही थे, रो रहे, नदियाँ बह रही थी आश्रमों की। तो उस समय कुछ ब्राह्मणों ने तय किया कि अभी हम जाएंगे अपने बालक को लेकर जाएंगे, बहुत सारे ब्राह्मण अपने बालक को लेकर निकलेंगे, हम ढूंढ के निकालेंगे और एक बालक उनको दे देंगे और निताई को वापस लेके आएंगे। सके चारों दिशा में सब ब्राह्मण गए, लेकिन कहीं भी उनको ब्राह्मण के पैरों का निशान भी नजर नहीं आया कि किस दिशा में गए ब्राह्मण। बहुत कम समय हो गया था, उतने समय में वो गांव के बाहर भी नहीं पहुंच सकते, लेकिन फिर भी कहीं भी पता नहीं चला। किसी को पूछा, आपने देखा है कोई सन्यासी बालक यहाँ से गया, कोई बोल नहीं पाया उनको। और लौट के आए तो एक चक्र जो है इतना सोना हो गया, पूरा सन्नाटा छा गया, सब लोगों ने भोजन करना छोड़ दिया, बालक लोग भी उदास हो गए, उन्होंने खेलना खेलना बंद कर दिया, उनका जीवन प्राण धन केवल निताई था, उनके साथ दिन भर वो खेलते थे, उनके साथ खाना पीना, गाय चराना, कूदना, पेड़ पर चढ़ना, कूदना वहाँ से नीचे, मक्खन खाना, गाय का दूध निकालना, ड्रामा करना, नाटिका पर प्रस्तुत करना, ये उनके दिन भर की लीला थी, मग्न थे वो, मग्न एकदम पुलकुल। सब लोग उदास हो गए, भोजन करना सबने छोड़ दिया। इस तरह से उस समय दुखी होने के बाद सब ज्योतिषी लोग एकत्र हो गए, दे ऑल केम टुगेदर, कैसा क्यों हुआ हमारे साथ, इतना दुख का पहाड़ क्यों टूटा हमारे ऊपर। तो सब लोग कुंडी लेकर बैठे, तो इस समय उनको ध्यान में आया, अरे जो हमारे गांव में बालक का जन्म हुआ था वही बलराम जी थे, वही नित्यानंद थे, हम लोग कोई उनको पहचान नहीं पाए, कैसे मूर्ख लोग हैं हम, इतने साल नित्यानंद प्रभु यहाँ पर, बलराम जी यहाँ पर नित्याय के रूप में रहे, हम किसी ने कोई उनको पहचान नहीं पाए, कैसे मूर्ख लोग हैं हम, कैसे दुर्दैवी लोग हैं, दुर्भाग्य लोग हैं हम लोग, लेकिन क्या करें, इतने साल से वो वदंती थी यहाँ पर कि बलराम जी आएंगे हमारे गांव, बलराम जी आएंगे, लेकिन वो आए और गए और किसी को पता भी नहीं चला, लेकिन हम लोग कम से कम 12 साल उनका दर्शन किए और दिव्य आनंद का प्राप्ति किया, भगवान की इच्छा थी कि हम लोग उनको पहचान नहीं पाए। इस तरह से एक दो तीन बातें और करते हैं अभी विश्राम देने के पहले। कहते हमारे पूर्वज कितने पीढ़ी से उनका इंतजार कर रहे थे, और इंतजार करते करके उनका देहांत हो गया, और हमारे जीवन काल में यहाँ पर बलराम जी ने अवतार लिया, हम उनको पहचान नहीं पाए, कितने दुर्भाग्य, हम लोग छाती पीट पीट कर रोने लगे। और एक दिन ऐसा आया कई साल के बाद कि हड़ाई पंडित और पद्मावती जी दोनों ने भोजन और जल त्याग दिया था, और एक दिन विरह के अग्नि में नदियों जैसे आंसू बहाते हुए हड़ाई पंडित और पद्मावती अंतर्धान हो गए, एंड दैट वॉज द क्लाइमैक्स। कम से कम इस गांव में सन्नाटे में शांति में, एक बहुत बड़ी गंभीर दुखी अवस्था में सब लोग टिके रहे, कोई बात नहीं करता था किसी का। ये गांव की ऐसी विशेषता हो गई कि नो वन वुड टॉक टू ईच अदर, इतने वो दुखी थे, इतने वो विकविसे ना, वी गॉट स्टंड, स्तंभ के रूप में सब भावनाएं समाप्त हो गई दुख के कारण। लेकिन हड़ाई पंडित और पद्मावती को देखकर सभी इस गांव में थे, तब से ही सब लोगों को इस गांव को छोड़ने का दिल कर रहा था, लेकिन पद्मावती और हड़ाई पंडित थे इसलिए सब लोग यहाँ पर थे। लेकिन जिस दिन पद्मावती और हड़ाई पंडित का अंतर्धान हो गए दोनों, उस दिन सब लोग ने अपना बुरी बिस्तर बांध लिया और किसी को बात न करते हुए कि आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, सब लोग कहाँ चले गए किसी को पता नहीं। एक गांव वाले को पता नहीं दूसरा गांव वाला कहाँ गया, क्योंकि वो बात करने के भाव में ही नहीं थे। उनके हृदय पर एक तो आघात हो चुका था, निताई जा चुके हैं, उसके बाद में उनके पूजनीय हड़ाई पंडित पद्मावती भी अंतर्धान हो गए, तो भी जीना किसके लिए है ये उनको पता नहीं था। इसलिए किसी से बात न करते हुए सब लोग अपने बच्चों को लेकर पता नहीं कहाँ चले गए। केवल दो चार ब्राह्मण रह गए इसके अंदर। तो इसकी आगे की कथा हम प्रसाद के बाद में करेंगे।